اب آگے یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کا قصہ شروع ہوتا ہے. آیت 69. وَلَقَدْ جَاتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثًا جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے. انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو. آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو. پھر آپ جلدی سے لے آئے ایک بچڑا بھنا ہوا. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَا عَيْدِيَهُمْ لَا تَسِلُ إِلَيْهِ. پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف کیا ہوا؟ نَكِرَهُمْ اجنبی خیال کیا ان کو. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا اور دل ہی دل میں ان کی طرف سے اندیشہ کرنے لگے. پھر کیا ہوا؟ فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. فرشتوں نے کہا کہ ڈریے نہیں ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف. یہاں سے ایک ہی واقعہ ہے لیکن دو انبیاء کرام کا تذکرہ ہے. ابھی تک ہم نے جو بھی پیچھے آیات پڑھی اس میں ہر ایک نبی کے بارے میں کچھ آیات تھی لیکن یہاں حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور ان کے حالات ہم پیچھے سے پڑھتے آئے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے لیے چنا تو ان پر ایمان لانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے جو ان کے چچا زاد بھائی تھے. آج کی زبان میں آپ کزن کہہ سکتے ہیں. دونوں مصر سے ہجرت کر کے کنعان میں آ گئے. ملک شام کا یہ شہر تھا. حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ دریائے اردن کا جو نیچے تری والا حصہ تھا وہاں اترے. یہ علاقہ اپنی زرخیزی اور خوشحالی میں بہت بے مثال تھا. یہاں پانچ بستیاں تھیں. ان کا تذکرہ آگے آنا ہے تو بھی بتا دیتی ہوں. سدوم، امورہ، امارت، زبولیم اور کچھ اس طرح کے اور نام ہیں جو آپ کو یاد نہیں رہیں گے اس لیے میں نہیں بولتی. یہ پانچ چھ بستیاں تھیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کچھ اخلاقی بیماریوں کا شکار ہوئی جس کا تذکرہ آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. آئے تو تھے فرشتے قوم لوط پر عذاب لے کر اس کی خبر لے کر لیکن راستے میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے پوتے یعقوب کی خوشخبری سنانے لگے. یہاں جو آیت ہے یہ حضرت ابراہیم کے پاس آنے کا تذکرہ ہے فرشتوں کا. جب فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت تقریباً 100 سال تھی اور بیوی جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آنے والا ہے وہ حضرت سارہ تھی. تقریباً 80 سال کی تھی. ابھی تک بیوی سارہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی. حضرت ابراہیم کا بیٹا موجود تھا اسماعیل. اسی لیے آگے ہم دیکھیں گے کہ خوشخبری کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال ہوا کہ بی بی سارا کے لیے خوشخبری تھی کہ اب آپ کے بھی بیٹا ہوگا. فرشتوں کا آنا ایک انجوجل واقعہ ہوتا ہے اس لیے فرشتے جو ہیں وہ انسانی روپ میں آتے ہیں. یہاں فرشتوں کے آنے کے تذکرے میں جاءت کا لفظ آیا جو مؤنث کی تا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو عرب لوگ مؤنث سمجھتے تھے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اور رسول کا لفظ جیسے نبی کے لیے آتا ہے اسی لیے فرشتے کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ فرشتے بھی اللہ کے حکم سے بھیجے گئے ہوتے ہیں اور رسول بھی. ابراہیم کے پاس آئے بشرا کے ساتھ آئے. خوشخبری کیا تھی؟ بیٹے کی خبر تھی اور وہی خوشخبری جو چہرے سے دکھے. قالوا سلاما. یہاں اب عمل کی باتیں آپ دیکھیں تو صرف چند آیات میں سے ہمیں کئی باتیں عمل کی ملیں گی. پہلی بات ہے کہ آنے والوں نے سلام کیا. فرشتے باہر سے آ رہے تھے انہوں نے سلام کیا اور یہی ادب ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں جہاں ہم نے سلام پہ ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ باہر سے آنے والا اندر موجود کو سلام کرے. یہ نہیں ہے کہ امیر غریب کو کرے غریب امیر کو کرے. بعض دفعہ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے شاپنگ کر کرا کے گھر میں گئے اب گھر میں ماسی تھی تو اب ایکسپیکٹ کیا کریں کہ وہ ہمیں سلام کرے. تو کیا ہمیں سلام نہیں کر سکتی؟ سلام بھی نہیں کرتی مجھے؟ نہیں آپ کریں گے. اس طرح باہر سے جاتی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو کریں گی. یہ نہیں کہ بچے جاتے لڑ جھگڑ رہے تھے آپ کو دیکھ کے انہوں نے سلام نہ کیا تو آپ ان کو غصہ ہونے لگے. تو سلام کرنے میں امیر اور غریب کا فرق نہیں کہ مالکن کو ماسی سلام کرے یا ماسی کو مالکن کرے یا نہ کرے. بالکل جو سلام کرے اس کا جواب اچھی طرح دینا چاہیے باہر سے کرے گا. اب یہاں لفظ سلام ہے لیکن اصل میں یہ کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے آئے گا یہ لفظ بھی. तो सलाम करते हैं पूरा लफ्ज बोलना चाहिए, खाली सलाम सलाम भी नहीं कहना चाहिए। बस दफा ईमेल्स में हम लोग लिख देते हैं ऐसे या खतों में, तो मुंह से उस वक्त जवाब पूरा दिया करें। जैसे पीएम्स हम करते हैं इंटरनेट पे क्लासेस के दौरान, तो अब इतना वक्त नहीं होता कि पूरी सलाम लिखें, क्योंकि क्विक मैसेज होता है। तो अगर आप वहां SLM डाल देते हैं, लेकिन आप मुंह से बोलें अपने आप को उस वक्त कहें कि उसको सलाम अलैकुम, इसी तरह जवाब में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। और फिर सलाम कोई करता है लेकिन जवाब देना फर्ज हो जाता है, इसको अच्छे तरीके से जवाब देना चाहिए। और ये वाली चीज हुई सलाम की, ना उन्होंने हाय किया ना गुड मॉर्निंग किया। इससे पता चलता है कि सलामती की दुआ जो है ये फरिश्तों का भी शौर है, और जन्नत में भी फरिश्ते आके सलाम करेंगे। सूरत मोमिन और कई और मुख्तलिफ सूरतों में इसका तज़किरा आता है कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो फरिश्ते उनको सलाम करेंगे। और अल्लाह ताला ने यही चीज उम्मत मोहम्मदिया का तहिया बना दी, यानी वक्त मुलाकात का सलाम। अफसोस है उम्मत मुस्लिमा का कि इतनी प्यारी नेमत को छोड़कर गैरों के बेकार और बेतुके दुख और दर्द से भरे हुए हाय बाय के लफ्ज इस्तेमाल करती हैं और एक दूसरे को दुआ नहीं देते। जब भी कोई आपको सलाम करे तो फौरन इमेजिन क्या करें कि ये आपको तोहफा दे रहा है, आपको सलामती की दुआ दे रहा है, तो इससे ज्यादा और खुशी की क्या बात होगी। तो लिहाजा ऐसी बात के जवाब में बहुत ही खुशी के साथ जवाब देना चाहिए। फिर क्या हुआ, फरिश्तों ने सलाम किया, इब्राहिम ने भी जवाब दे दिया। अब आते ही इब्राहिम का यहाँ किरदार हमें दिख रहा है, वो क्या, फमान लबी सन जा भिजलिन हनीज, जरा भी देर ना की। कोई ये नहीं सोचा कि अच्छा बैठे हैं थोड़ी देर बातें करें या फिर जाने का वक्त होगा तो फिर पूछूंगा क्या खाएंगे क्या पिएंगे, नहीं, फौरन गए और खाना तैयार शुरू किया। इससे मेहमानी के आदाब बहुत सारे हमें मिलते हैं, बल्कि सूरह ज़ारियात के आगाज में भी आएगा और हजरत इब्राहिम की जात से आज भी उम्मत मोहम्मदिया के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी जो हैं वो मेहमान नवाजी के साथ आती हैं। और कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे, खाना नहीं खाते थे जब तक कि कोई मेहमान उनके पास ना आ जाए, और कभी कोई ना मिलता तो बाहर खड़े हो जाते और कोई आता तो खिलाते। एक दफा एक कूड़ी के मरीज को साथ लाकर बिठा के खाना खिलाया, कोई भी उन्होंने इसमें आर नहीं महसूस की। और यही होता है वयुत एमोनत ताम आला हुब्बी ही, सूरत दहर में आता है कि अल्लाह की मोहब्बत में लोगों को खाना खिलाना चाहिए। एक रिवायत में आता है, बनी इसराइली रिवायत है, कि एक दिन हजरत इब्राहिम ने एक मेहमान की तलाश शुरू की। एक अजनबी सा मेहमान मिला, जब वो खाने पे बैठा तो इब्राहिम ने कहा कि बिस्मिल्लाह कहो। उसने कहा मैं तो नहीं जानता अल्लाह कौन है। कहने लगा अच्छा फिर तुम यहां से उठ जाओ। अब जब वो गए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आ गए, कहा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तो कुफर के बावजूद उसको अभी तक खाना खिलाया पिलाया, आपने एक लुकमा उसको खिलाने में बुखल किया। ये बात सुनते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि मैंने तो गलत किया। उठे उसको ढूंढने गए, वापस बुलाया, कहने लगे कि खाइए। कहने लगा नहीं पहले वजह बताएं, अभी तो आपने मुझे भेज दिया और अब बुलाया तो इसकी वजह क्या है, क्यों बुला रहे हैं मुझे। जवाब में बता दिया कि मैं तो ये समझा था और हमारा दीन तो ये कहता है। कहते हैं कि इस बात को सुनकर उस शख्स ने कहा अच्छा तुम्हारा रब इतना करीम है, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मुसलमान हो गया। तो बहरहाल अच्छा खाना खिलाना, अच्छी मेहमान नवाजी भी एक बंदे के दीनदार होने की निशानी है। हमारे यहाँ अमूमन दीन के लफ्ज पे और दीनदारी के लफ्ज पे यही आता है कि आप कुर्सी में सजा के पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। नहीं, एक अच्छा दीनदार एक अच्छा मेहमान नवाज भी हो सकता है। पढ़ाने का वक्त है तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाइए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। खिलाने का वक्त आया तो भी बेहतरीन तरीके से खिलाइए और खाइए। हमारा दीन कुर्सी मेज और डेस्क और चेयर का नहीं दीन, हमारा दीन जो हम यहाँ बातें करते हैं, इस वक्त हमारा कोई लिसनर सुन रहा हो ये आयतें तो वो कहेगा अच्छा दीन तो इतना खूबसूरत है कि इनको दीन की बातें भी सिखाता है। कल हमारी किसी दावत में आए और हम उसको अच्छा ट्रीट ना करें तो कहेगा लो इतनी सी बात पे अमल नहीं करते तो बाकी बातों पे कहाँ करेंगे। तो यहाँ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो अमल है वो हमारे लिए हुज्जत बनता है। और यहाँ जो बात है इजिल, इजिल कहते हैं बछड़े को, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं सूरत बकरा में, गाय का बच्चा जो होता है उसको कहते हैं। और हनीस का लफ्ज जो है ये आप इसका बड़ा आसान सा लफ्ज जो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, बारबेक्यू, गोश्त का अपनी ही चर्बी में पकना। पहले दौर में गोश्त ही वो चीज थी जो इंस्टेंटली मिल जाती थी। आज हम के हाय इब्राहिम ने तो पूरा बकरा जिबा करके खिला दिया होगा, फिर आज हम तो भी आए मेहमान तो उसको बिठाएं और चल पड़े कहीं से बकरा लेने और उसकी सब्जी बनवा के लाएं। नहीं, जैसे हमारे घरों में आम चीजें जो होती है ना आज के दौर में, कहीं जाहिर है के चाय का सामान होता है, जूस हो सकता है घर में, हमारे तो खैर माशाल्लाह सभी कुछ ही होता है, पूरे पूरे बकरे हमारे फ्रीजरों में होते हैं। लेकिन इससे ये नहीं मुराद कि आप में कहें कि मेहमान की खातर जब वो बछड़े से ही होगी, नहीं, जो घर में हो उसको अच्छे तरीके से स्माइली फेस के साथ खिला दें। मेहमान जो होते हैं, ये कोई जहमत नहीं बनने चाहिए कि आप उसको इजलिन हनीज ही खिलाएं। प्लस हनीज को थोड़ा सा करके फिर इस पे हम बात करेंगे, यानी चर्बी टपकाता हुआ गोश्त, बिल्कुल फ्रेश मीट के मानों में आता है। सहरा में घड़े के अंदर गोश्त को पत्थर पर भूनना, फिर हर तरह के गोश्त के लिए ये लफ्ज आ गया। इससे दिल का उनका खुला होना भी दिखता है और इससे ये भी पता चलता है कि मेहमान तो दो तीन ही आए थे। इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये तीन फरिश्ते थे, जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील, जो इंसानी शक्लों में आए और इब्राहिम ने उनकी खातर शुरू कर दी, लेकिन पूरा बछड़ा पका रहे हैं। ये भी खुले दिल की बात है। बस लोग गिन गिन के चीजें रखते हैं, चार मेहमान है तो चार कबाब रख दिए, अब एक ने अगर पहले ही दो पकड़ लिए तो तीसरा शर्मिंदा होता रहेगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। हदीस है कि जो मेहमान के आने पे आपका दस्तरखान खुला होना चाहिए आम हालात से। घर में आप जो भी दाल साग खाएं, जैसा भी खाएं, लेकिन खाना कम नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा एक बुरी बात है के दौर में, पर हेड सिस्टम चल पड़ा। और आप देखिए कि कहीं जाके बॉक्सेस मिलते हैं, आप अफतारियों में जाएं, बड़े बड़े फंक्शंस मस्जिदों में भी होते हैं, और यहाँ मैंने वैसे इतना नहीं ये देखा, लेकिन अमेरिका में तो बिल्कुल हम सब बॉक्सेस ही बनवा के लोग अमूमन एक दूसरे को देते हैं जहां भी जाएं। सहूलत बहुत होती है उसमें, लेकिन उसमें खाना जाया बहुत होता है। दूसरी बात है कि थोड़े का एहसास होता है, अगर आप लोग पहले ही सोचते कि लोग जाया ना करें, बनाते ही थोड़ा थोड़ा, इतने से चावल डाल दिए, इतने डाल दिए, अब किसी की अगर ज्यादा जरूरत है तो उसको पता चल गया कि अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलना। ये इस्लामी कल्चर नहीं है। इस्लाम का कल्चर आप देखें, खुले थालों में चावल रख के और उसी में सब खाओ। आज भी अरबों की मेहमान नवाजी बहुत मारूफ है। तो खाना इतना होना चाहिए कि जो मेहमान के खाने के बाद बचे और घर वाले भी खा सके। ठीक है, खर्चा नहीं है वो और बात है, लेकिन बाज का दिल छोटा होता है, ये नहीं करना चाहिए। मेहमानों के बहाने बेचारे घर वाले भी खा ले, कि बाज बच्चे और शोहर इसीलिए भी खुश होते हैं मेहमानों के आने पर, किसी बहाने हमें भी अच्छा खाना मिल जाता है। तो बहरहाल इसमें इशारा मिलता है कि थोड़े लोगों के लिए भी ज्यादा खाना पकाया जा सकता है। फिर एक और चीज देखिए कि खुद ही गया और पका के ले आए। बेगम को नहीं कहा बेगम ट्रॉली लाओ। आज के मर्दों का हाल क्या, वो कहेंगे घर मेहमान आए हुए थे, तुम पढ़ने गई हुई थी। यदि हमारे यहाँ ये तसव्वुर है कि मेहमान आए और मियाँ सब खुद ही खातिर मदारत कर लें और बेगम को डिस्टर्ब ना करें कि कल इनका पेपर है, इन्होंने पढ़ना है, वो तो कहेंगे मुझे ज्यादा वक्त दो। खुद ही गए, खुद ही पका लिया और बेगम मौजूद थी। अभी आप देखेंगे ये भी नहीं कि बेगम काम पे गई हुई थी, उनकी बेगम मौजूद थी लेकिन उन्होंने खुद किया। और अल्लाह के नबी का भी अमल था, खिदमत करते थे, खातिर करते थे। ये कब होता है, जब बिल्कुल नेचुरल ताल्लुकात होते हैं, जो घर में रख दें। बाज चीजें बची कुची रख ही इसलिए रहते हैं मेहमानों के आने पे निकालेंगे, जिनके बच्चे ज्यादा होंगे साथ ना। नहीं, यकीन करें कि अगर रूहानी इल्म हम लोगों को खुशी से देते हैं ना, तो खाने का इल्म भी दें। आप अपने मुंह का लुकमा तोड़ के दूसरे को दे दें। मुझे फिर याद बात आ जाती है अपने वालिद की, कहते थे कि वो रोटी जो पूरी खुद खा ली जाए वो इतना पेट नहीं भरती, जो आधी रोटी तोड़ के दूसरे को साथ खिला दे दें फिर जो खुशी मिलती है। तो ये एक बहुत प्यारा अदब होता है और इस चीज का हमारे दीन से गहरा ताल्लुक है। खैर, इस पे आ गई तो आप खुश तो बहुत होंगे, लेकिन आगे सबक नहीं होगा। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए अमल की खुलासे की बात यह है कि मेहमान के आने पे खुशी का इजहार करें, घर में मौजूद चीजों में से निकाल दें, वही रखें लेकिन सलीके से पेश करें। और अगर सिर्फ ये कि मेहमान को सलाम करके आप घर चले गए खाने पकाने और मेहमान शर्मिंदा होता रहा, आ जाए ना, प्लीज आ जाए ना, नहीं आती हूँ आती हूँ, अब दो तरह की बदमजगी होती है। मेहमान समझते हम खाने आए हैं और घर वाला बार बार बच्चों को डांट रहा था, केक भी खत्म कर दिया तुमने, कुकीज भी खत्म हो गई। अब मेहमान समझता ये मेरी वजह से बच्चों को डांट पड़ रही है और मैंने आके खामखा इनको बोझ डाल दिया। पहला मसला क्या आता है जहन में मेहमान का सुन के, हाँ इनको खिलाएंगे क्या? नहीं भाई, है जो खिला देंगे, है घर में अच्छा खिला, नहीं है नो प्रॉब्लम, कोई शर्म की बात नहीं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही किया। अब हुआ क्या कि मेहमान के लिए जब इतने शौक से पकाया जाए तो फिर अगली ख्वाहिश क्या होनी चाहिए कि बस दिखा दिया, अब इसको छुपा के अंदर ले जाए। कुछ लोग रख देते हैं और कहते ही नहीं कि खाओ, मेहमान बेचारा शर्मिंदगी के मारे खाएगा नहीं। नहीं, फलम्मरा आई दिया हम, और जब देखा इब्राहिम ने कि उनके हाथ ला तसीलु इलई खाने की तरफ भड़ी नहीं रहे, तो कहा कि फलम्मरा आई दिया हम ला तसीलु इलई, ही की जमीर किसकी तरफ है? खाने की तरफ। हाथ नहीं भड़े तो नकीरा हम, नकीरा क्या लफ्ज है, पीछे गुजर गया ना, इनकार, अदम मार्फत। तो हजरत इब्राहिम को थोड़ी सी अजनबियत महसूस हुई, वह औजसा मिन हम, और खौफ महसूस किया दिल में। औजसा का लफ्ज है ना, वो जीम सीन इसका रूट है, दिल ही दिल में डरना और इसे छुपाने की कोशिश भी करना, दिल में खौफ होता है। अब किस चीज का डर था हजरत इब्राहिम को कहते हैं कि उस दौर में जब कोई शख्स किसी के घर बुरे इरादे से आता था ना, तो उसका नमक नहीं खाता था कि कहीं नमक हरामी ना हो जाए, और वो खाना नहीं खाता था कि लो जी अब खाना खा के इनको डसें, आज तो हाल बुरा है ना कि हम खाते भी हैं और जड़ें भी काटते हैं और वराते भी हैं और उसी के साथ मामला बिगड़ते हैं। उस दौर में ऐसा नहीं था। तो हजरत इब्राहिम को खौफ महसूस हुआ कि शायद ये दुश्मनी के इरादे से आए हैं, तो इसलिए ये खाना नहीं खा रहे और इसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे। और खीफा खौफ से, अब अगर देखें तो यहाँ दो लफ्ज आए हैं खौफ के मानी के। घबराए नहीं, सिर्फ सुनने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि अरबी जुबान में सिर्फ लफ्ज खौफ के लिए कितने लफ्ज हैं। एक तो वही है जो आपके सामने आऊ जैसा, दिल ही दिल में डरना, इसको छुपाने की कोशिश करना। दूसरा लफ्ज आपके सामने खीफा है, खाफा से आने वाले खतरे का अंदेशा। अब देखिए यहाँ ये दोनों लफ्ज अप्रोप्रिएट हैं, वाकई यहाँ यही लफ्ज आने चाहिए थे ना। पहले में हजरत इब्राहिम के अंदर की कैफियत दिख रही है, दिल में डर रहे हैं कि क्यों नहीं खा रहे, लेकिन अभी छुपाना चाह रहे हैं कि मेहमानों को क्या कहें। खीफा में उनको आने वाला खौफ था ना कि दुश्मनी ना करें। तो ये अल्लाह का कलाम है कि हर चीज अपनी जगह पे आई है। आप ये नहीं कह सकते कीफतम मिनहुम व आउ जैसा मफहूम से, इसी तरह खशा का लफ्ज आता है, ऐसा डर कि इसका असर अजार जवारिख पर पड़े। फिर रा, ये भी लफ्ज आगे आएगा, रा कहते हैं ताज्जुब करना और मोहूम खतरे से डरना, वहमी खतरे, यानी ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो। फिर वजीला का लफ्ज खौफ के लिए आता है, अपनी कोताही से किसी से डरना, बेचैन होना। फिर रोब शिद्दत खौफ और दहशत के लिए आता है, हजर आता है पीछे पड़ चुके, किसी खतरे की चीज से बचना, डरना, चुकन्ना होना। इत्तका तकवा जिससे है, इंजाम का खौफ, गुनाहों से बचने का जो इंसान के दिल में एक कैफियत है उसको कहते हैं। फिर रहब कहते हैं ऐसा डर जिसमें एहतियात भी हो, इज्तिराब भी हो और तवील भी हो। फिर एक अशफका का लफ्ज है, ये सारे लफ्ज कुरान में आते हैं अपनी अपनी जगह पे, किसी की खैर ख्वाही के साथ उस पर तकलीफ आने से डरना, डर और रहम के मिले जुले जज्बात। बताएं दुनिया की कौन सी जुबान है जो इतनी सेचुरेटेड है कि सिर्फ लफ्ज खौफ या डर के लिए 10-12 लफ्ज आते हैं, और कुरान में हर लफ्ज अपनी जगह पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट आया है। तो इससे पता चलता है कि ये अल्लाह का कलाम है। बहरहाल आगे क्या हुआ, कालू कहने लगे ला तखफ इन्ना उरसलना इला कौमी लूत, कहा डरिए नहीं हम नहीं खा रहे, हम तो कौमे लूत की तरफ आए हैं। इंसानों की जुबान में सोचे तो ऐसे लग रहा है, कहा जा रहा है नहीं हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमारी दावत आ गए। ऐसे कहते हैं नहीं हम तो बस रात चलते आपको मिलने आ गए थे, और असल तो हमारा खाना आगे पका हुआ है। लेकिन यहां असल में हजरत इब्राहिम को उस वक्त तक नहीं पता चला ये फरिश्ते थे। इससे भी पता चलता है कि नबी जो होते हैं वो गैब का इल्म नहीं जानते, उनको जब तक पता ना चल जाए, बताया ना जाए, तब तक वो नहीं जान पाते कि कौन इंसान है और कौन किस इरादे से आया। और दूसरी बात इससे ये पता चलती है कि फरिश्ते एक ही हैं लेकिन दो मुख्तलिफ कामों के लिए आए हैं, इधर इब्राहिम के लिए बिलबुशरा खुशखबरियों के लिए, और कौम लूत के लिए अजाब के लिए आए। आज दुनिया में हम देखते हैं तो हर तरफ गम खुशी, कहीं मौत, कहीं शादी, कहीं पैदा होना है, तो ये सारे काम अल्लाह सुबहान तआला फरिश्तों के जरिए से करवा रहे हैं कि वो मुख्तलिफ चीजों को करके किस तरीके से ये करते हैं कि कहीं खुशियों की बातें तो कहीं गम की बातें। उनके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं थी। फिर क्या हुआ, वमरातुहु, अब जब ये पता चल गया कि आने वाले मर्द नहीं बल्कि फरिश्ते हैं, तो बीवी का तस्करा आ रहा है, ये भी एक खूबसूरत नुकता है यहाँ। और उसकी बीवी कौन थी, हजरत सारा, बीवी सारा बहुत खूबसूरत थी, सारा बिनते फारान या हारान इनका नाम आता है। कहते हैं ये भी इनके चचा की बेटी भी थी, बीवी भी थी, हिजरत की इन्होंने। कायमतुन खड़ी थी, यानी वह सर्विंग के लिए खड़ी थी या वैसे ही खड़ी हो गई। हाँ फदहकत, फिर वो हंस पड़ी। किस बात पे हंस पड़ी, इसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई गई। नंबर एक ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरिश्तों को ना पहचानने तो डरे, ये पहचान गई थी तो इसलिए खुश हो गई। बास कहते हैं कि इसलिए हंसी कि कौम लूत की फसाद अंगेजियों से ये बाखबर थी, तो खुश हो गई कि अब इनकी हलाकत होगी तो चले जान छुटेगी ऐसे गंदे लोगों से। बास कहते हैं इसलिए खुश हुई हंसी कि आसमानों पे तो इस कौम की हलाकत के फैसले में और ये खुशियां मना रहे हैं। और बास कहते हैं कि तकदीम और ताखीर है, खबर अभी आगे मिलने वाली है लेकिन हंसने का तस्करा पहले हो गया। लेकिन बहरहाल हंस पड़ी, खुश मिजाज थी, अच्छी थी, और वो खुश हो गई कि बेटे की खबर मिल रही है। फबशर ना हा भी इसहाक, फिर हमने खुशखबरी दी उसको इसहाक की। یہاں لفظ ہاں کی ضمیر پہ بات وہ یاد کر لیں جو شروع میں بتائی کہ یہ بی بی سارا کو بیٹے کی خوشخبری تھی، اس لیے یہاں مؤنث کی بات آئی. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو اولاد کی شاید خوشی زیادہ عورتوں کو ہی ہوتی ہے، واللہ عالم، لیکن یہاں بات جو ہے وہ مؤنث کی طرف جا رہی ہے. اس کو خبر دی، سوچیے ذرا کس عمر میں خبریں مل رہی ہیں، 100 اور 90 سال، مینو پاز کی عمر سے دگنا سال گزر گیا آگے. ڈاکٹر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس عمر میں بچے کی امید نہ رکھیں، اور ہو جائے امید تو بچے کو ابارٹ کروا دیں تاکہ آپ مائی نہ جائیں یا بچہ کچھ مطلب ایسا نہ ہو، بچہ اب نارمل نہ ہو. یہ ساری باتیں جس کا اللہ کے نبیوں کے ساتھ تعلق ہوگا وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو حقیقت سمجھیں گے اور کبھی بھی اس سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے. بہرحال پھر کیا ہوا، قالت بولی. اچھا یا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب کی بات ہے کہ بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی خبر دے دی. صبر کا پھل بہت میٹھے ہوتے ہیں، پھر اللہ ایک نہیں اللہ ایک سے زیادہ چیزیں دے دیتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ داہکت کے لفظ سے ہی حضرت اسحاق کا نام نکلتا ہے، واللہ عالم. قالت کہنے لگی، اب یہ دیکھیے ان کے سڈن ری ایکشن، جیسے اچانک کوئی خبر سن کے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں نا وہ بتائے جا رہے ہیں. قالت یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ کر، ہائے حیرانی مجھ پر. یہ وہی لفظ ہے جیسے ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں نا ہائے میں مر جاؤں، جیسے ایک مفہوم کی بات ہے نا، ہائے وائے ویلتا، بالکل ان ایکسپیکٹڈ خوشی ملی تو اس کے بعد ان کی زبان پہ یہ لفظ آ گئے. الیدو، کیا میں جنوں گی؟ آ کیا ہے؟ استفہام، کوسچن، حمزہ. اور الیدو کا روٹ کیا ہوگا؟ واو لام دال، شاباش. میں جنوں گی یعنی میرے بچہ پیدا ہوگا. وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں بڑھیا ہوں. عجوز عین جیم زا، عاجز کا لفظ اسی سے ہے. وہ عورت جو بڑھاپے کی وجہ سے بچے پیدا نہ کر سکے اس کو عجوز کہتے ہیں، اور اجزا کہتے ہیں عربی میں آخری بچے کو، یعنی آپ کے جو سب سے آخری بچہ ہے اور اب اور بچوں کی اگر امید نہیں ہے تو وہ اجزا کہلائے گا. ٹھیک ہے، کہنے لگی میں بوڑھی بھی ہوں اور پہلے تو جوانی میں بچہ ہوا نہیں اور اب اس عمر میں بچے کہاں سے آ جائیں گے. وَحَاذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ شوہر بھی بڑا بڈھا، یعنی میں بھی بوڑھی، میں بھی بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں اور شوہر بھی جو ہیں وہ بھی بوڑھے ہیں. عربی زبان میں شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں اور استاد کو بھی کہتے ہیں. شیخان کہتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم کو. کبھی بھی کسی حدیث سے پہلے اگر آپ یہ لفظ پڑھیں کہ اس کی روایت کی یا شیخان، دو شیخوں نے، تو مراد کیا ہوتا ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ. اور باقی 100 سے اوپر کی عمر کا شخص تو باقی بوڑھا ہو جاتا ہے. ان نہا صلی شعین عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. کیا اس عمر میں بچے کا ملنا، یہ بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات عقل میں یہ نہیں آتی کہ ہمیں اس عمر میں بچہ ملے. قالو، فرشتے بولے، اتا جبینا، کیا تم تعجب کرتی ہو؟ عجب سے عین جیم با. غور کرنے سے آپ دیکھیں تو اس میں بہت ہی صوتی حسن بھی ہے نا. اتا جبینا، کیا تم تعجب کرتی ہو اس بات پہ؟ کیا من امر اللہ، ہی اللہ کے حکم پہ؟ یعنی تمہارا خیال ہے کہ 100 اور 90 سال کی عمر کے شخص کو بچہ نہیں مل سکتا؟ کیا اللہ کی رحمت سے، یا اللہ کی رحمت کیا ہے؟ بچہ، اولاد. ہمارے ہاں بھی عموماً کہتے ہیں فلاں پہ اللہ کی رحمت ہو گئی، لیکن یہی رحمت زحمت بن جاتی ہے اگر ان بچوں کی تربیت اچھی نہ کی جائے. وہ برکات ہو، اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم، تم پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد بھی برکت کا سبب ہوتی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اولاد اور مال دنیا کی زینت تو ہے، لیکن جب ان کو باقیات الصالحات بنا لے، آن گوئنگ چیریٹی بنا لے، ان کو صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگا دیں، ان کی ایسی خوبصورت تربیت کریں کہ ہمارے بعد اچھا نام پیش کریں، تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کر دی کہ یہ تو تمہارے لیے اہل بیت. اور واقعی حضرت یعقوب اور اسحاق آپ دیکھیے کتنے بابرکت ثابت ہوئے. انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کیا گیا اور بڑی شان والا ہے. یعنی اللہ کی شان اس سے زیادہ ہے کہ وہ اسباب کو دیکھے. اللہ تعالیٰ تو بوڑھے کو بھی بچے دے سکتا ہے، جوان کو بھی دے سکتا ہے، اس کی شان بہت ہے. اب یہاں اگر اس واقعے پہ ہم اتنی پہ سرا سی بات کر لیں کہ کس طریقے سے ایک عورت کا ری ایکشن تھا جو سڈن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا اچھا لگا کہ اسی کو کوٹ کر دیا. عورتیں عموماً دیکھیے جذباتی زیادہ ہوتی ہیں، بہت آگے تک سوچ لیتی ہیں نا، बाज दफा औरतें जब फ्रंट सीट पे बैठी होती है ना मियाँ के साथ ड्राइव करवाते हुए, करते नहीं करवाते हुए, तो वो हाल देखने के होते हैं। जरा से वो रुकी रुकी रुकी, वो आगे ही आ रहा है, वो हो रहा है, स्पीड कम कर लें, देख के नहीं आप चलाते। इसीलिए फिर अक्सर मर्द बीवियों को आगे नहीं बिठाते तो फिर रोती हैं कि आप मुझे बेगम नहीं समझते और मुझे क्या करते हैं। लेकिन औरत बहरहाल औरत है, चाहे वो नबी की बीवी हो। फिर आप देखिए कि दूसरी चीज इसमें हमें पता चलती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में लगा दी। डिवोटेड थे, सबसे ज्यादा गैर मामूली इंसान थे अपने वक्त के। लेकिन मेहमान नवाज इतने कि घर आए मेहमान के लिए खुद खाना पका रहे, बीवी की खिदमत करने वाले या बीवी को सहूलत देने वाले मसरूफ कितने को होंगे। खुद कुरान पाक में आता है कि वो एक उम्मत है, एक उम्मत जितना काम एक शख्स कर गया। इसके बावजूद आप देखिए कि इस वक्त बेटे की खुशखबरी मिल रही है लेकिन मकसद की लगन से नहीं हटे। हमें जरा खुशखबरियां ही मिलने लग जाए तो हम सुस्त होने लगते हैं। खुशी मिलना तो दूर की बात है, औलाद हमारी गोद में आए वो तो दूर की बात है, सिर्फ उसकी उम्मीद हमें इतना ओवर एक्साइटेड कर देती है कि जहनी तौर पर हम सोच लेते हैं कि अब हम नमाजों को भी कम पढ़ लें, कोई बात नहीं, खड़े नहीं होंगे तो बैठ के पढ़ें, बैठेंगे नहीं तो लेट के पढ़ें, और नींद की वजह से अब सोते ही रहें तो नमाजें चलती जाएं। वो खुशखबरियां जो बंदे को मकसद से दूर कर दें, वो माल की हों, वो औलाद की हों, वो घर की हों, या कोई भी रिश्ते, शादियां, जॉब, अगर इंसान को उसके मकसद से हटा दें तो वो खुशखबरी नहीं रहती। जाहिर लगती है लेकिन वो देता तो पीछे से वही है ना, जिसका रास्ता, जिसके कहने पे नमाज पढ़ने हैं, जिसने जिंदगी गुजारने के तरीके बताए। तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि जितनी नेमत बड़ी मिले उतनी ज्यादा इबादत करें, भाग भाग के और काम करें, क्योंकि ऐसे ही लोग फिर दुनिया में तब्दीली पैदा करते हैं। जो हर वक्त सेल्फ सेंटर्ड होके अपनी मामूली सी चीज के ऊपर सारी चीजों को पीछे डाल दें तो वो कभी भी फिर अल्लाह के काम के नहीं बनते। जब हमारी वफादारियां सिर्फ अपनी जात से रहती हैं तो अल्लाह के दीन से हम उतने वफादार नहीं रहते। जब हम अल्लाह के दीन से वफादारी निभाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जाती जिंदगी में खुद को नुकसान देना पड़ता है। हम सब अपने आप को चेक करें। मिसाल देती हूँ, अल्लाह ताला आप सबको भी महफूज रखे सदमात से, खुशियों से, गमों से। लेकिन आप इस वक्त एक बामकसद जिंदगी गुजार रही हैं। आप मेरा हेल है, पिछले आपके सारे जितने साल थे उसमें सबसे ज्यादा अहम साल ये है कि जिसमें आप अल्लाह की किताब सीख रही हैं। इतने में पीछे से कोई अच्छी खबर आ जाए, कोई बुरी खबर आ जाए, क्या सिर्फ जज्बातियत के नाम पे आप इस क्लास को छोड़ के छुट्टियां करके चले जाएंगे? जाना चाहिए आपको। अल्लाह ना करे अगर कोई मर गया तो मर के अल्लाह सबको बचा के रखे। अगर कोई जी पड़ा पैदा हुआ खैर से जीता रहे, देखेंगे उसको जब होगा वक्त। कोई शादी को गमी, अपने ऊपर एक इमरजेंसी हालात जब तक बंदा नहीं फील करता ना, तब तक मकसद को नहीं निभा सकता। कई जज्बाती लम्हे आते हैं इन रास्तों में, उस वक्त अपना काम काम काम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने इतनी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन इन सारी बातों को सुन के अब जरा देखिएगा कि आगे जो इनको तकलीफ है वो क्या है, कि हाय कौम लूत को तभाह कर देंगे, हाय उसमें तो मेरा भांजा या मेरा कजन भी रहता है उसमें लूत। तो इस तरीके की कैफियत बताती हैं कि गैर मामूली लोग जो होते हैं ना, वो गैर मामूली हालात में काम करते हैं। हम जिस वक्तों में काम छोड़ चुके होते हैं ना, असल में वो वक्त हमें गैर मामूली बनाने के लिए आते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बहुत लोग हैं दुनिया में। नजला आ गया तो छुट्टी, काम सर में दर्द तो छुट्टी, मेहमान आ गया तो छुट्टी। ये एवरेज क्लास के लोग होते हैं, थर्ड क्लास नहीं मैं बोलती, एवरेज दर्जे के लोग होते हैं। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग जो होते हैं फिर वो किसी मौके पे अपने आप को काम से पीछे नहीं करते।